आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप सब अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 135। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ा था डैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, के एक्चुअल में ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। उसके बाद हमने ये पढ़ा था डैट रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। उसी के अगर हम कंपैरिजन में सेक्सुअल की बात करें तो उसके अंदर हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड्स। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि एसेक्सुअल के अंदर विदाउट सीड्स रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल के अंदर विद सीड्स रिप्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली ये हमने बेसिक्स जो है इस चैप्टर के पिछली ऑडियो में समझे थे। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। सो ऑन पेज नंबर 135 द टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेग्नेंट वाटर बॉडीज। These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An algae breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals, as you can see in figure 12.6. This process continues and they cover a large area in a very short period of time. जैसा कि यहाँ पर एक और प्रोसेस के बारे में बताया गया है अंडर द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। बेसिकली ये प्रोसेस एल्गी के अंदर पाया जाता है। जो एल्गी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी विदाउट एनी हेल्प ऑफ सीड्स और विदाउट यूजिंग सीड्स दे रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस देयर न्यू ऑफस्प्रिंग। आपने कभी पानी के ऊपर फॉर एग्जांपल स्टेग्नेंट वाटर, जिसको हम खड़ा हुआ पानी या फिर रुका हुआ पानी बोलते हैं, अगर कहीं पर पानी रुका रहे ज्यादा दिन तक तो वहां पर ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं। बेसिकली ये जो ग्रीन कलर के पैचेस हैं जिसको हम काई बोलते हैं, इन पैचेस को एल्गी कहा जाता है। बिकॉज ये जो पैचेस होते हैं ये डार्क ग्रीन कलर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नोन एज एल्गे। जब बहुत सारे मिलियन बिलियन ऑफ एल्गेस जब इकट्ठे हो जाते हैं और एक कॉलोनी बना देते हैं तो हम उसको हिंदी में काई बोलते हैं और ये रुके हुए पानी के ऊपर पाई जाती है। बेसिकली जो एल्गी है ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, दीस आर द एल्गे, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गे ग्रो। जब एल्गे के पास प्रॉपर अमाउंट में वाटर हो, न्यूट्रिएंट्स हो और जो उनके लिए फूड मटेरियल हो which is required by algae, तो उस टाइम पर ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है इतनी तेजी से by the help of a process that is fragmentation. Basically fragmentation process में जो हमारा algae cell है वो पहले ब्रेकअप होता है, यानी वो टूट जाता है। ब्रेक होने के बाद वो दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप फिगर नंबर 12.6 में देख सकते हैं डैट अ बिग अपेरेंट सेल ऑफ एल्गे इज ब्रेक अप और डिवाइडेड इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। इस तरीके से ये अपने आप को अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है। नाउ दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब यही छोटे छोटे फ्रेगमेंट या फिर पीस ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में इवॉल्व होते हैं एंड इमर्ज होते हैं। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जिसके कारण बहुत ही कम समय में एक बहुत ही लार्ज एरिया ये कवर कर लेते हैं और इनकी पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर जाती है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और इसका एग्जाम्पल है एल्गी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। इन चैप्टर 1 यू लर्नड दैट द फंजाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। रिपीट एक्टिविटी 1.2। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distances. Spores are asexual reproductive bodies. अब जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया गया है, basically spore formation एक और प्रोसेस है under the topic asexual reproduction. ये भी एक तरीका है जहां पर छोटे छोटे स्पोर की फॉर्मेशन होती है और इन्हीं स्पोर्स की मदद से आगे जाकर एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है। आपने चैप्टर 1 में फंजाई के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने ब्रेड पीस का एक बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट या फिर एक्टिविटी हमने देखी थी। ब्रेड पीस के ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.2 में देखा था। बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं ये कॉटन लाइक यानी छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रेड के ऊपर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ब्रेड को थोड़े दिन तक रखे रखोगे तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी और उसके सरफेस के ऊपर माउल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि थ्रेड लाइक मेशी स्ट्रक्चर होता है और दिखने में ये कॉटन जैसा होता है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। अब जैसा कि आप फिगर 12.7 में देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। यहाँ पर ये एक फंजाई है जो सर्कुलर पार्ट है, इट इज स्पोरेंजियम, और जो नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइफा। ठीक ऐसे ही स्ट्रक्चर ब्रेड के सरफेस के ऊपर बन जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे बहुत ज्यादा अमाउंट में छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे ये स्पोरेंजियम ब्लास्ट होता है या फिर ये फट जाता है तो अंदर से जितने भी स्पोर्स है ये बाहर एयर में आ जाते हैं एंड एयर की वेव्स के साथ या फिर विंड करंट्स के साथ ये आगे फ्लो करते जाते हैं। जब ये फ्लो करते हुए किसी भी एक जगह पर उतरते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये वेट में इतनी लाइट होते हैं कि ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं। नाउ व्हेन दीज स्पोर्स फॉल ऑन बॉडी, और किसी भी चीज के ऊपर जब ये फॉल करते हैं तो वहां पर प्रॉपर जब कंडीशन इनको मिलेगी, न्यूट्रिशन, वाटर या फिर इनको प्रॉपर इनके लिए एनवायरमेंट मिलेगा, तो उस एनवायरमेंट में ये दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसा कि यहाँ लिखा है कि इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन से इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। प्लांट्स such as moss and ferns also reproduce by means of spore. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि spore formation के बहुत अलग तरीके के examples हैं. पहला है ferns, moss और इसी के साथ fungi. So this was the topic of spore formation और उसके examples भी मैंने आपको बता दिए. अब यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा ये सभी बातें थी asexual reproduction के लिए. जहां पर हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा एंड बडिंग के बारे में, ये सारे प्रोसेसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं. नाउ द वेरी नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. यू हैव लर्नड अर्लियर the structure of a flower. You know that the flowers are the reproductive parts of a plant. Stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Please बच्चों आप इसे underline कर लीजिए. जैसा कि यह लिखा है, एक flower के अंदर अलग अलग parts present होते हैं, जिसमें से जो stamen है वो male reproductive part है और जो pistil है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो ये दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट इन अ फ्लावर. नाउ इन एक्टिविटी नंबर 12.4, टेक अ मस्टर्ड और चाइना रोज और पेट्यूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टल. जैसा कि यहाँ लिखा है, आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, You have to take a mustard flower, China rose flower or you can take petunia flower. आपने इसमें इनके reproductive parts को separate करना है, उन्हें अलग करना है और अलग करने के बाद आपने इन parts को study करना है. Flowers which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flowers. Please underline this statement. वो flowers जिसके अंदर या तो पिस्टिल प्रेजेंट है या फिर स्टेमन, और वी कैन से दैट आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर, देन इट इज रेफर्ड टू एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. और वो फ्लावर जिनके अंदर दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. और मस्टर्ड, पेट्यूनिया और रोज के जो फ्लावर्स हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो सेम प्लांट में या फिर डिफरेंट प्लांट में. अब यहां पर आपको फिगर नंबर 12.9 दे रखी है, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. प्लीज आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर आपको स्टेमन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया गया है कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं. स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज एंथर. और पिस्टिल के अंदर बेसिकली फोर पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन इन फिगर 12.9 ए पार्ट. एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स which produce male gametes. A pistil consists of stigma, style and ovary. Ovary contains one or more ovules. The female gamete or the egg is formed in an ovule. Please underline this whole paragraph as this is very very important. यहाँ पर बताया गया है कि जो pollen grains होते हैं, जो basically anther के अंदर present है, इन्हें male gametes कहा जाता है. और pistil के अंदर जो ovary and ovules हैं, इनके अंदर female gametes होते हैं, that is egg. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. बेसिकली इस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और रिजल्टिंग एक चीज बनाते हैं या फिर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम जायगोट बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन. जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप. सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, they can be carried by wind or water. Insect visit flowers and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Now this is the definition of pollination. Please underline this, that jab pollen grain किसी भी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. बेसिकली जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो उसी के रिजल्ट की वजह से फर्दर जाइगोट प्रोड्यूस होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होती है इन द प्लांट्स और फ्लावर्स. बेसिकली पॉलिनेशन होने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि एयर के थ्रू भी ये पॉलिनेशन हो सकती है या फिर विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू. कई बार क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और जैसे वो एक प्लांट पर लैंड करेंगे तो वहाँ के पॉलन्स उनकी बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं. देन आफ्टर दैट जब वो किसी दूसरे प्लांट पर लैंड करेंगे तो उनके पॉलन्स जो उनकी बॉडी पर स्टिक है वो सभी उस फ्लावर के ऊपर लैंड कर जाते हैं या फिर ट्रांसफर हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. तो इस तरीके से पॉलिनेशन प्रोसेस होता है. इफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अगर पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर पे लैंड हो या फिर सेम प्लांट के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर पे लैंड हो तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. और अगर वो अपने फ्लावर की जगह या फिर अपने प्लांट के अलावा किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर लैंड होगा तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन. द सेल विच रिजल्ट आफ्टर fusion of the gametes is called a zygote. The process of fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization. The zygote develops into an embryo. जैसा कि यहाँ लिखा है कि जो सेल होते हैं वो फ्यूजन की मदद से बनते हैं, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं एंड एज अ रिजल्ट zygote बनता है. ये जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिससे जाइगोट प्रोड्यूस होता है, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए. द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. जब ये जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट कर देता है. नाउ फर्टिलाइजेशन का जो डायग्राम है वो है फिगर नंबर 12.11. सो प्लीज मार्क दिस फिगर. This is the diagram representing the fertilization process. Now, the next topic is fruits and seed formation. अब fertilization तो हो गई जहां पर zygote की formation हुई है. जब zygote बन जाता है तो उसके बाद the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. जैसे ही fertilization होती है उसके बाद ओवरी धीरे धीरे फ्रूट्स में डेवलप होना स्टार्ट कर देती है और फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं. द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी.
बेसिकली जो फ्रूट होता है वो राइपेंड ओवरी है. द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स. द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो होता है और ये एम्ब्रियो एक बहुत ही हार्ड कवरिंग एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है या फिर एनक्लोज्ड रहता है. सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज. सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स. तो ये भी अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं. कुछ फ्लैशी और फ्रूटी होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सीड डिस्पर्सल. इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस. दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस. अब जैसा कि यहां पर लिखा है कि हमारी प्रकृति के अंदर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स यानी एक ही तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग जगह पर उगाए जाते हैं. ऐसा इसीलिए हैपन है या फिर ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो सीड्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर डिस्पर्स हो जाती हैं. समटाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ. कई बार जब हम फील्ड पार्क या फिर फॉरेस्ट से चलकर आते हैं तो हमारे क्लोथ्स या फिर हमारी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सीड्स या फिर फ्रूट्स स्टिक कर जाते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं. डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दी सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर. देयर वुड बी सेवर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट वॉटर मिनरल्स एंड स्पेस. अब जैसा कि यहां पर बताया गया है कि अगर एक ही प्लांट के सभी सीड्स एक ही जगह पर गिर जाए और वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर दें तो वहां पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी. इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब जैसे कि एक ही जगह पर 20 टाइगर्स रह रहे हैं तो वहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा या फिर एक ही जगह पर एक टाइगर रहेगा तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा. बेसिकली एक गिवन टाइम पीरियड और एक गिवन स्पेस में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहां पर उतनी ही ज्यादा फाइटिंग और उतनी ही ज्यादा कंपटीशन होता है. कंपटीशन मतलब खाने का कंपटीशन, जगह का कंपटीशन, उसी के साथ शेल्टर, फूड, फ्रूट्स और अलग अलग चीजों का कंपटीशन वहां पर होता है. एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इन टू हेल्दी प्लांट्स. और इस कंपटीशन और इस फाइटिंग की वजह से जो हमारे सीड्स हैं वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएंगे. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट. बेसिकली जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सीड डिस्पर्सल की वजह से अपनी हेल्प पाते हैं और मदद पाते हैं. इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स. जब सीड डिस्पर्सल होता है तो इसकी वजह से इनके बीच में कॉम्पिटिशन प्रिवेंट होता है. कॉम्पिटिशन किस चीज का? सनलाइट वाटर मिनरल्स एंड मैनी मोर सब्सटांसेस विच इज रिक्वायर्ड डे बाय डे फ्रॉम द प्लांट्स. It also enables the plants to invade new habitats for wider distribution. Basically, seed dispersal की वजह से जो plants है वो अलग अलग new habitats में भी invade करते हैं और इनका wider distribution होता है, यानी अलग अलग जगह पर ये plants फिर पाए जाते हैं. Seed and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. Basically, पेड़ पौधों के जो फ्रूट्स और सीड होते हैं ये हवा की वजह से, पानी की वजह से और एनिमल्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल होते हैं और ट्रांसफर होते हैं. विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आर्क दैट इज मदार एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर get blown off with the wind
फार अवे प्लेसेस। अब जैसा कि यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो सनफ्लावर का हेयरी फ्रूट होता है, जो मदार यानी आग का जो हेयरी सीड है, या फिर ऐसे ही कई अलग अलग तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं सच एज मैपल, ड्रम स्टिक, इन सभी के सीड्स और जो इनके पार्ट्स होते हैं वो हवा की वजह से ब्लोन ऑफ हो जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं और न्यू हैबिटेट में इन्वेड कर जाते हैं और वहां पर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जो पानी की वजह से डिस्पर्स हो जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। और ऐसे जो सीड्स होते हैं इनकी एबिलिटी होती है या फिर ये डेवलप कर जाते हैं अपने आप को ताकि ये पानी की करंट्स के साथ बहकर ये दूर तक ट्रेवल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। अब कुछ सीड्स एनिमल्स की वजह से भी डिस्पर्स होते हैं, एस्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस। इसका एग्जाम्पल है हुक सीड्स या फिर स्पाइनी सीड्स। बेसिकली जो कांटों वाले बीज होते हैं या फिर जो हुक वाले या जो स्पाइनी सीड्स होते हैं ये एनिमल की बॉडी से स्टिक कर जाते हैं और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसी के साथ सीड भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एंड वो न्यू हैबिटेट में इन्वेड करते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल है जेंथियम एंड यूरेना, एज यू कैन सी इन फिगर 12.15। तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जेंथियम एंड यूरेना जो कि सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, आप फिगर नंबर 12.13 में भी देख सकते हैं सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल जो कि एयर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल और इन्वेड करते हैं। आफ्टर दैट फिगर 12.14 द हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड बी पार्ट हेयरी सीड ऑफ मदार और आर्क जो कि अगेन हेयर की मदद से या फिर एयर के करंट्स के अंदर ये ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह तक इन्वेड हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से वाटर के थ्रू भी कोकोनट जैसे जो फ्रूट्स हैं और जो उनके सीड हैं वो भी सीड डिस्पर्सल का ही एक एग्जांपल है। सेम एज दैट अगर हम एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल की बात करें सो जेंथियम एंड यूरेना ये दो ऐसी प्लांट स्पीशीज है जो इनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क। कुछ सीड तब डिस्पर्स करते हैं जब कोई फ्रूट बर्स्ट हो जाता है यानी वो फट जाता है विद सडन जर्क्स। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जब कोई फ्रूट इस तरीके से बर्स्ट करता है सडन जर्क्स की वजह से तो उसके अंदर प्रेजेंट जो सीड्स होते हैं वो आसपास स्कैटर हो जाते हैं, काफी दूर तक वो फैल जाते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बेल्सम। और इसके दो एग्जांपल्स हैं दैट इज कैस्टर एंड बेल्सम। इन दो टाइप के प्लांट्स के अंदर बेसिकली इस तरीके से सीड का डिस्पर्सल होता है जहां पर पेरेंट प्लांट बर्स्ट हो जाता है, ब्लोन ऑफ हो जाता है और उसके अंदर के जो सीड्स प्रेजेंट है वो काफी दूर तक स्कैटर हो जाते हैं और फर्दर जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सीड डिस्पर्सल पॉसिबल है। सो हमने इस टॉपिक में अलग अलग तरीके पढ़े सीड डिस्पर्सल के कि किस तरीके से सीड डिस्पर्स होते हैं और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अलग अलग सीड्स जो है इन्वेड करते हैं इन न्यू हैबिटेट्स। सो हेयर योर चैप्टर इज फिनिश। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको मार्क करवाए हैं, अंडरलाइन करवाए हैं और जो फिगर मैंने स्पेशली मार्क और हाईलाइट करवाई है, आपने इन सभी की रिवीजन करनी है और इन्हें प्रैक्टिस करना है। इस ऑडियो के लिए इतना ही। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।